जय राधव कुंज बिहारे
यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक संख्या 20 पर 12 दिसंबर 2016 को इस्कॉन सूरत गुजरात में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाधारी भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
आशीर्वाचन भवतो मधुविषादन शीघ्रापाति नैषे शिवराजन भवतो मधुविषादन
और कुमारों ने विश्वास दिलाया कि भगवान की माया के शिकार कभी नहीं बन सकते। दूसरे शब्दों में भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन के हृदय को भौतिक कलमश से स्वच्छ रखने का एकमात्र उपाय है। कर्म ज्ञान तथा योग विधि से कोई भी अपने हृदय के कलमश को दूर नहीं कर सकता, किंतु यदि मनुष्य एक बार भक्ति करके भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो बिना किसी कठिनाई के उसके हृदय का सारा मल दूर हो जाता है। श्रीपाद की
जो इस विशेष श्लोक का उच्चारण संत मान कर रहे हैं, इस बाईस अध्याय में आप पढ़ते हो कि बीजू महाराज मिले कुमार के साथ। बीजू महाराज का क्या परिचय है? ये परिचय है जो भगवान के अवतार शक्ति अवतार भगवान के अवतारों के अनेक विभाग हैं। विषावतार गुणावतार लीलावतार मनोदरावतार युद्धावतार और शक्ति अवतार के भी दो भाग हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जैसे कहते हैं जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, इनडायरेक्ट जब कहते हैं जब भगवान किसी को शक्ति प्रदान करते हैं किसी कार्य को निभाने के लिए। जैसे कि जीसस क्राइस्ट, आपने जीसस क्राइस्ट का नाम सुना है? जीसस क्राइस्ट का वाले निकाल वो है शक्ति वैसा होता भगवान ने उन्हें शक्ति दी थी धर्म के ऊपर सामने के लिए। तो जो कुमार प्रीति मना जाए शक्ति वैसा होता और शुरू से ही धार्मिक थे, उनके पिता भी नास्तिक बुद्धि के थे जिसके कारण प्रजा अत्यंत दुखी थी। तो फिर जैसे राजा बने उन्होंने प्रजा को आदेश दिया भगवान का अनुदान। तो पितु महाराज जैसे श्लोक पे आप पढ़ते हो उनकी शुरू से रुचि थी, आकर्षण था पर भगवान के प्रति। संत कुमार ने एक संत कुमार कौन है? ये चार कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र और ये चार कुमार हैं, उनके पास सुविधा है, वो किसी स्थान में पहुंच सकते हैं, किसी रोड में भी बिना किसी हवाई जहाज के या रेल गाड़ी के या वीजा के पास करके सीधे लोग में जो निवासी हैं उनके पास ये योग्यता है, कहाँ भी भ्रमण कर सकते हैं बिना किसी सुविधा के। ना लंबी को भी स्पेसमैन द्वारा जाता है, स्पेसमैन को हिंदी में कहा गया है वो किधर भी ये पहुंच सकते हैं बिना किसी सुविधा के। तो कुमारा आए थे प्रीतु महाराज के महल में और कुमारा क्यों कहते हैं? ये ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि क्रिया साहस में जुड़े संतान बढ़ाने के लिए, पर ये इच्छा क्या थी कि वो ब्रह्मा जी तो अपनी योगिक शक्तियों के द्वारा उन्होंने शरीर को बढ़ने से रोक दिया। कुमार कहते हैं जब भी कोई बार चार या पाँच साल का हो जैसे दलान महाराज कहते हैं कौमराज चल पाएगा चार पाँच साल की आयु से आध्यात्मिक ज्ञान अनुभव करना आरम्भ कर देना चाहिए। तो पीतु महाराज ने बड़े आदर के साथ कुमार का स्वागत किया, चरण धोए और कहा मेरा क्या सौभाग्य है क्या मेरे संग मेरे घर में आए हो। और स्वागत के पश्चात शास्त्र में कहा गया है कोई शत्रु भी आपके घर में आए तो बड़े आदर से स्वागत होना चाहिए, सबसे बेहतर है आप अतिथि का स्वागत करो प्रसादम के साथ, प्रभु जी के हाथी के साथ ही। जो व्यक्ति भी हमारे मेजबान मंदिर में आए आज के माया स्वभाव में उसको बिठा कर गर्म प्रसाद मेरे तिरुपति मिलता है और मेरे यहाँ से कई गुरुद्वारों में जाकर होता है तो सबसे बेहतर है आप प्रसाद के साथ हमें स्वागत करो। अगर प्रसाद के साथ स्वागत नहीं कर सकते तो जल के साथ कीजिए, जल के साथ नहीं कर सकते कमरे में बैठने का स्थान लीजिए, वो भी नहीं कर सकते तो प्रभु जी कहते हैं हाथ जोड़कर चलो हार्दिक स्वागत। प्रीति महाराज ने हमारा चरण दो है और कहा गया है जो क्रिया सन्यासी है सिंहासन के घर में जाते हैं जिन्हें कोई सुविधा प्राप्त करने के लिए उन्हें पवित्र बनाने के लिए। उसके पश्चात प्रीति महाराज ने कुमारा से प्रश्न पूछा, क्या था प्रश्न? उन्होंने पूछा ये बताइए कि मनुष्य जीवन के द्वारा क्या लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि प्रीति महाराज को पता नहीं था, ये नहीं कि प्रीति महाराज का ज्ञान नहीं है। प्रीति महाराज ने प्रश्न पूछे हम सबके महाराज में आप भगवत में देखते हो ये इसी प्रकार का उदाहरण था। अनेक स्थानों में यही प्रश्न पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से, जैसे कि प्रश्न महाराज ने पूछा प्रथम स्कंद में जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए, प्रश्न का असीम भाव है कि और सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए थे ये प्रश्न सुनकर। उन्होंने कहा इस प्रश्न के उत्तर से पूरी प्रजा लाभ उठाएंगे। तीसरे स्कंद में अब देवावती और कपिल देव की शिक्षा पढ़ते हैं, देवावती और कपिल देव का वर्ताव पढ़ते हो, देवावती के पति का नाम था कलामुनि जिनके बाद में योगी सिद्धि आई। कलामुनि ने पूरा महल बना दिया था, जैसे हवाई जहाज बोलते हैं ना, जैसे वो महल बोल रहा था जिसमें कपिल कलामुनि थे उनके पास ये होगी सिद्धि। आज के अब हवाई जहाज में जाओ तो आपको फिल्में दिखाते हैं जिसमें पहाड़ होगा और सागर होगा, पर कलावा मुनि ने असली महल जिसमें पहाड़ थे सागर था सब बना लिया और ब्रह्मांड में यात्रा की। तो देवभूति ने इसी प्रकार का प्रश्न कपिला देव से पूछा, उन्होंने पूछा ये बताओ कि इस क्लेश की स्थिति से कैसे हमें छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और जब कपिला देव भगवान ने सुना ये प्रश्न तो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने यही कहा जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, इसके उत्तर से पूरा समाज लाभ उठाया। दृष्टि में आप युद्ध नारायण मुनि का बर्ताव पढ़ते हो, यहाँ के उन्होंने भी पूछा जो व्यक्ति भी ऐसा आश्रम है वो कैसे शास्त्र बता रहे ये उनको सब अपना। तो प्रीति महाराज का भी यही प्रश्न था, हालांकि उनके पास ज्ञान था उन्होंने अपने उदाहरण से ये उपदेश दिया है कि जब हम किसी संत से मिले तो हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कृष्ण द्वारा हमको अधिक लाभ की भी मांग है, पर हमें भूल जाते हैं कैसे हमें आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कर सकते हैं। तो पितृ महाराज का प्रश्न सुनकर महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और सरल मान पितृ महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना आनंद सुन है। तो और अनंत कुमार ने कहा आपका प्रश्न बड़ा लाभदायी है और इसके उत्तर से सब बदलाव होगा। तो क्या कह रहे हैं बदलाव होना है अनंत कुमार? सबसे पहले तो यह साबित किया जा रहा है कि अनंत कुमार कह रहे हैं आप ये भावना है परम भगवान का शुरू से आत्मज्ञानी सत्य विषय होता है, पर जब एक विनम्रता से उन्होंने महाराज की चरण धोए हो चरण धोए जैसे सीतावा ब्राह्मण जब द्वारका गए थे तो द्वारका में सीतावा ब्राह्मण का भगवान ने स्वागत किया बिठाया चरण धोए खुद भगवान ने ये शिक्षा दे चुके इस प्रकार ब्राह्मण का स्वागत किया जाता है। जब हम शास्त्र में ब्राह्मण के विषय में पढ़ते हैं तो फिर ये नहीं नाम के ब्राह्मण, नाम के ब्राह्मण की व्यवस्था भी नहीं। जब हम ब्राह्मण शब्द इस नाम ब्राह्मण का वर्णन करते हैं इसका अर्थ है असली ब्राह्मण बिलावली ब्राह्मण से जिसमें कि ब्राह्मण की गुण हो जैसे कि 18वें अध्याय में कहा जाता है समुदम तो वो सोचा ज्ञान ज्ञान ब्राह्मण भगवतम भगवान ब्राह्मण के गुणों का भगवान ने हमें उदाहरण दिया कैसे श्री ब्राह्मण विष्णु भक्त की स्वागत की जाती है। तो सनत कुमार कह रहे हैं इससे पहले सनत कुमार ने ये साबित किया है कि जब दिव्य चर्चा होती है हर व्यक्ति को लाभ पहुंचता है, जो शिक्षा दे रहा है वो इसका लाभ उठा रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है वो इसका लाभ उठाता है और जो प्रजा है वो भी लाभ जैसे परीक्षा है प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी से सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया अनेक और सब वहाँ उपस्थित थे सब ने लाभ उठाया दिव्य ज्ञान का जो कि सुखदेव गोस्वामी ने दिया था। तो संत कुमार कह रहे हैं आप ये भाव आकर्षण तो है भगवान का गुणगान करने के लिए और ये जो आसक्ति है जो लगाव है भगवान के प्रति ये प्राप्त करना बहुत कठिन है। भगवान क्या कहेंगे हमें भावना जानना मानना है। अनेक जन्मों के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जो समझता है क्या मोहित का कारण। तो विश्वनाथ सत कुमार कह रहे हैं ये जो लगाव है जो आकर्षण है आपका परम भगवान के प्रति ये आकर्षण प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो आप कह सकते हो अगर ये इतना कठिन है हम क्या कर रहे हैं हमें छोड़ देना चाहिए प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान ने इस विषय में गीता में कहते हैं देवी चंद्र माया मामा माया द्वारा इस माया का विरोध करना सरल है विरोध कठिन है। तो आप पूछ सकते हो अगर कठिन है तो हमारी क्या संभावना आगे भगवान कहते हैं महा में प्रवधान माया में धाम अगर कोई मेरी शरण में आएगा तो इसका विरोध कर पाएगा, विजय अध्यात्म विजय प्राप्त कर सके। तो यहां कहा जाना है सनत कुमार के द्वारा कि ये जो आकर्षण पितु महाराज का है परम भगवान के प्रति, परम भगवान का गुणगान करने के प्रति ये आकर्षण बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। पर इस आकर्षण को प्राप्त करने से ये देखिए जो महल है, जो हमारा आकर्षण है, काम वासना के प्रति जो रुचि है, ये जो रुचि है ये क्या होगी, क्या हो जाएगा, निकल जाएगी हृदय से। चेतना महाप्रभु ने अपने प्रतिनिधियों को तो आदेश किया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, और जो इतिहास रूप गोस्वामी जी ने छोड़ा है, जीव गोस्वामी ने छोड़ा है, सनातन गोस्वामी ने छोड़ा है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकती। तो स्वयं कहते हैं महाप्रभु केवल 800 छोड़ के गए जिन्हें हम शिक्षा के नाम से जानते हैं, और हम आखिर मंदिर में ऊपर सारे मंदिर में मंदिर आने के पश्चात हम इन 800 को पहुंचाना। अगर आप घर में रहते हैं मंगल आदि नहीं आते तो अच्छी अच्छा भाव है, अगर आप भी श्लोकों का उच्चारण कर दो। तो सबसे पहले श्लोक में महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं, हरि नाम के उच्चारण लाभ क्या है। कई बार लोग पूछते हैं हम ये कार्य करेंगे इसका लाभ क्या है, कई बार लोग पूछते हैं आप कहते हो मंगल आदि में आओ क्लास में आओ इसका लाभ क्या है। जैसे कि भगवत क्लास के विषय में भगवत में काशी करते हैं न सपरेश अपदेश नित्यम भगवत सेवा, भगवत युद्ध मंच हो गए ध्यान से भगवतम सुनोगे या पढ़ोगे। अगर आप ऐसी स्थिति में हो या नहीं सुन सकते तो पढ़ो, तो इसका क्या लाभ होगा। हृदय की जो मेहनत है दूर हो जाएगी, भक्ति की भावना स्थापित होगी। तो चेतना महाप्रभु ने इसी भाव को प्रस्तुत किया है शिक्षा के पहले श्लोक में, पर हरि नाम के प्रति चेतना महाप्रभु कहते हैं हरि नाम के उच्चारण का पहला लाभ यह है चेत दर्पण मारना भगवान वाग्य निर्वाह, यह है कि हृदय में जो मेहन है प्रॉपर जी उदाहरण दे देते हैं, आईने में धूल है साफ कपड़े से धूल को दूर कर सकते हो, उसी प्रकार हमारे हृदय में खास क्रोध लोभ मोह मन से लेकर मैं और इसकी कोई सीमा नहीं। ये जो महल है ये घट सकती है और अंत में समाप्त हो सकती है हरि नाम के उच्चारण के माध्यम से। पर यह हरि नाम का ज्ञान, हरि नाम की महिमा का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा आपको, ये है अगला प्रश्न। आप कह सकते हो कि हरि नाम की महिमा का लाभ है, हरि नाम का उच्चारण का लाभ है, पर ज्ञान हमें मिलेगा कहां से। तो आज इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभु जी ने तीसरे स्कंध के 25वें अध्याय का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक और मनन किया। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है सतम प्रसंगम मम वीर्यस्य। इस अध्याय में कपिला देव ने आठ श्लोकों का वर्णन किया है जिनका एक ही अर्थ है। आठ श्लोक लगातार, इन सब श्लोकों का एक ही मूल उद्देश्य है, वो क्या है कौन बताएगा? भक्तों की संग देवभूमि का प्रश्न था कहिए बताइए कैसे मुझे इन क्लेशों से छुटकारा प्राप्त हो। आप कहोगे आज के प्रश्न से कांजे कर आपके समाजी बोलो तो देव की तो प्रश्न था ये बताइए कैसे इन क्लेशों से छुटकारा प्राप्त हो सकता। तो देव भगवान की प्रश्न ने कहा केवल भक्तियों के माध्यम से ही भक्तियों के माध्यम से ही इन क्लेशों से छुटकारा प्राप्त कर सकते। जैसे एक सौ के कार्य में प्रभा जी कह रहे थे कर्म ज्ञान योगा के द्वारा भगवान की शक्ति आसक्ति नहीं बढ़ सकती। तो कृपी भगवान ने कहा कि भक्तियों के माध्यम से आप तेज होते हैं छुटकारा प्राप्त कर सकते। देवभूति का अगला प्रश्न था ये भक्ति को कैसे प्राप्त होगा। आप कहते हैं कि भक्तियों के माध्यम से भक्ति को कैसे प्राप्त होगा, जिसके उत्तर में भगवान कभी कहते हैं अनेक श्लोकों का वर्णन किया जिसमें भक्तियों की महिमा का गुणगान प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में कपिला देव क्या कह रहे हैं, भक्तों के साथ में रहोगे तो भक्ति की महिमा का ज्ञान प्राप्त होगा। तो जब आप भक्तों के संग में हो तो आपका क्या भाव होना चाहिए, कृष्णा कथा की चर्चा करें। अगर आप भक्तों के संग में रहकर प्रज्ञा कर रहे हो मान लो हाँ मौसम कैसा है बाजार कैसा ऊंचा है बहुत ही चर्चा कर रहे हो तो उसे आप कृष्ण कथा नहीं कह सकते, उस संज्ञा का कोई लाभ नहीं। पर अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो कैसे आप अध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, कैसे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, मैंने 40 साल का जमा किया काम लगा बताओ वो कृष्ण कथा नहीं मानी जाएगी। तो कपिल देव भगवान ने कहा कि भक्तों के सन में रहने से भक्तियों की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो, भक्तियों की महिमा का ज्ञान का पालन करके आप बौद्धिक आकर्षण को बढ़ा सकोगे और ध्यानिक आकर्षण को बढ़ा सकोगे। क्या है हमारा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य यह है कि हम आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ाएं और पौधे का दर्शन करता है। अगर आप ये समझने के दोनों पड़े हम पौधे का दर्शन बढ़ाना चाहते हैं, आजवाजू का सबसे कीमती वस्तु है वो दीजिएगा। परस्पर रहेगा पास हड्डी को स्वरा बना लेगा, बुद्धिमान व्यक्ति ने उनसे पूछा ये परस्पर प्राप्त कैसे करते, पूरी कथा सुनाई किस प्रकार उन्होंने शिव जी को पसंद किया था फिर एक बार प्राप्त हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि अगर ये सबसे कीमती वस्तु थी तो सर ने कच्चे डब्बे के लिए क्यों रखा, जरूर और कीमती वस्तु होगी। तो ये ब्राह्मण अरे सबसे कीमती वस्तु थी तो अगर थोड़ी के डब्बे में क्यों रखा, इससे ज्यादा कीमती वस्तु होगी है, अगर वो किसी वस्तु चाहिए तो परस्पर देखना पड़े। तो ब्राह्मण ने चला फिर से फेंक दिया, वैसे बोले क्या प्राप्त हुआ, तो कहने का भाव यह है कि शिव भक्ति चाहिए तो पौधे कार्य बहुत जानना पड़ेगा। तो साधु समझे रहने का हमें प्रयास करना चाहिए, जो व्यक्ति अपने आप को साधु समझता है उसका व्यवहार भी साधु जैसा होना चाहिए, उसका आचरण भी साधु जैसा होना चाहिए। ये नहीं जैसे कहते हैं मुंह में राम राम आगे तो जब आप साधु में साधु 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 शब्द पढ़ते हो तो हमें भ्रम में नहीं आना चाहिए, साधु के भी लक्षण होने चाहिए, साधु के भी गुण होने चाहिए, साधु का भी आचरण होना चाहिए और फिर हम उसे साधु मानते हैं। तो भक्त के संग प्रवणिता में कह रहे हैं भक्त के संग में रहने से जो कोई जगह मैं भगवान के बस में झूम जाए। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है चांदी का, जितना डबलोगे उतनी दाल चमकेगी, और आप सब तो डायमंड के बहुत बड़े हो तो आप फिर जानते हो डायमंड के हीरे को जितना डबलोगे जितना ज्यादा आप लोग पाउडर लगाते हो जितना डबलोगे उतनी ज्यादा चमकेगी। ये भाव आप मुझे कह रहे हैं उसी प्रकार जितना हम प्रयास करेंगे भक्ति मार्ग में उसी उतनी चमक है। तो साधु संगत के द्वारा हमें जीवन ज्ञान प्राप्त होता है, और साधु संगत जैसे प्रभुपाद जी ने कहा दो माने होते हैं ग्रंथ संगत भक्त संगत। आप जो ग्रंथ को पढ़ते हो जिस हम उनका अनुनाश कर रहे थे वो भी है साधु संगत, अगर वो साधु संगत नहीं होता तो कैसे संभव है लोग पढ़कर कृष्ण हो जाते हैं भक्ति की शिक्षा के प्रति, वो भी और भक्त संगत। और कृपा कहते हैं अधो श्रद्धा तथा साधु, जब आपके हृदय में ये भावना होगी यहाँ भगवान के चरण रखना चाहते हैं तो भगवान आपको अति इच्छा के अनुसार बुद्धि देंगे। इसे गीता में भगवान कहते हैं सर्व सच्चा निर्देशानुविष्ट मेरे कारण लड़ाई चलती है, मेरे कारण भूलने की क्षमता अपमान मतलब हमारा भूला और स्मरण मतलब तो दोनों ही साफ होते हैं भगवान जी का भगवान भूलने की शक्ति क्यों देते हैं। कई बार लोग पूछते हैं भगवान ने माया को क्यों बनाया, अगर माया नहीं होती माया में गिरते भगवान ने माया उन बंदियों में बनाई है जो उसके प्रति आकर्षित होना चाहते हैं और जो शुद्ध भक्ति के प्रति आकर्षित होना चाहते हैं उनके लिए मार्गदर्शन है। तो इच्छा के अनुसार तो शरद कुमार ये साबित कर रहे हैं इस साधु संघ में रहने के माध्यम से हमें सदा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और दिव्य ज्ञान के पालन से अपनी आकर्षण को ना चल सकते। जैसे भजन क्रिया कर भजन क्रिया जो आचार है विधियों का पालन जाए इनके पालन से समझी क्या कहते हैं भौतिक आकर्षण है ये दूर है। तो इसलिए हमें सदा भक्तों की संगत प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए और ये जो ग्रंथ है प्रभा जी के इनको केवल बांटना ही नहीं इनको पढ़ना भी है। हम जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ते और अगर आप पढ़ोगे तो आचार्य की संगति प्राप्त होगी क्योंकि जब प्रभा जी तात्पर्य लिखते थे या डिकेट करते थे विदेश आने से पहले प्रभा जी के पास एक छोटा टाइपराइटर था टूटा हुआ जिस पर उन्होंने परमेश्वर की प्रथम सुनने को टाइप किया और विदेश जाने के पश्चात मैंने क्या पॉइंट लिखा प्रभा जी को भक्तों ने डिक्टाफोन मशीन दी थी जिसमें डिक्टेट करते थे। प्रभा जी पहले अपने सामने जो महाचार्य साथ लिया था उसको पढ़ते थे और फिर अपने विचारों में जोड़कर उन्होंने हमें साथ लिया। तो हमें किताबें पढ़नी भी चाहिए जब हम तात्पर्य पढ़ते हो तब प्रभा महान चरण की संगत प्राप्त कर ले। तो श्रवणम कीर्तनम यही एक उपाय है बौद्धिक आकर्षण को बचाने के लिए और कोई उपाय नहीं। कर्म ज्ञान योग भगवदगीता में कल रात को गीता जाने के उपलक्ष हम गीता के निर्माण की चर्चा कर रहे थे। तो भगवदगीता में कर्म योग का वर्णन है ज्ञान योग पर निर्णय क्या है भक्ति योग के माध्यम है जिसके द्वारा आप मुझे समझ सकते हो और भक्ति योग को आप खुद अनुभव कर सकते हो। उदाहरण के लिए जब आप बड़े उत्साह से जप माला करते हो शास्त्र पढ़ते हो आपका ध्यान एक उत्साह ऊंचा रहता है। मान लो आप एक दो हफ्ते जप माला नहीं करते ठीक रूप से ठीक समय नहीं जाते तो क्या देखोगे बहुत ही आकर्षण बढ़ जाएगा ध्यान में आकर्षण घट जाएगा। ठीक है अगर ध्यान से विभिन्न विधियों का पालन करो तो क्या लाभ होगा ध्यान सर्व कुमार जो उपदेश दे रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है उपदेश दे रहे हैं पृथ्वी महाराज को और पृथ्वी महाराज के माध्यम से ये उपदेश हम सबकी बढ़ाई कर रहे हैं और इसमें संक्षेप में संदेश यह है कि अगर आप आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ाना चाहते हो साधु संग में रहो और साधु संग में रहोगे, प्रयास करोगे तो आप तेजी के साथ ध्यान की वृद्धि कर सकोगे। और यह बहुत ही आकर्षण उठाना, ध्यान आकर्षण बढ़ाना इतना सरल नहीं है, पर अगर आप भक्ति के विषय का पालन करोगे तो कर पाओगे। और हमें शुद्ध भक्तों की संगत में जाने का प्रयास करना है। शुद्ध भक्तों की संगत अर्थ है शुद्ध भक्त और उनकी शिक्षा। जैसे जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हो आप शुद्ध भक्तों की संगत में हो, क्योंकि भक्त में ग्रंथों में भगवान की वाणी शुद्ध भक्तों का तात्पर्य। इसलिए जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हो जरूरी आप शुद्ध भक्तों को मौका देते हो लोगों के भौतिक हृदय में अध्यात्म जागृति को दूर करने के। इसलिए ग्रंथों की महिमा का वर्णन क्या कारण है कि हमारे आचार्यों ने ऐसे आपको एग्जाम्पल दिया, क्योंकि ग्रंथों में भगवान की वाणी और भगवान की वाणी का ऐसा प्रभाव होता है जो पढ़ेगा सुनेगा अवश्य ही आकर्षित होगा। तो संक्षेप में संतुष्मान लोग से अध्यात्मिक उन्नति के लिए पर हमें ध्यान से भागवतम रोज पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और रोज पढ़ोगे तो हृदय की मैं अनुभूति भक्ति भावना स्थापित होगी और ध्यान से सुनेंगे तो बुरा लाभ उठाएंगे। अगर हम क्लास में आकर सो जाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान सुनना बहुत आवश्यक है। कई बार बाबा जी कहते थे कि जब वो अपने गुरु महाराज के लेक्चर में जाते थे कई बार उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो ध्यान से सुनते थे। बस उसे गाने में कहा था ये भक्त बड़े ध्यान से सुनता है, बड़े ध्यान से विचार लिखता है। तो हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, कई नाम से जा भी ध्यान से सुनना चाहिए। और जिन्हें ध्यान से सुनेंगे उन्हें तेजी के साथ चेतन ब्रह्मांड में होगा। तो भगवत नाम सुनना पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हमें ध्यान में बना दी चाहिए। हरे कोई प्रश्न है कि No question? Yes.
What are the symptoms of
God? Well, I touched on a point in the lecture, the symptoms of a pure devotee is, I guess, here we said, I'm not saying that I'm not ready to go on with it. The pure devotee is only interested in talking about Krishna, glorifying Krishna, guiding everyone on the devotional path. Is in summary, we want to serve the Lord without any motivation. Yes. And we're anxious to give this knowledge to others. Like Prabhupada's example, in the year 70 he saved for the West because he was only interested in delivering the condition of soul. Okay?
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.